जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिस्ट डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर मिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। Thank you very much, Hare Krishna. Happy to be with all of you. Hare Krishna. आज रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस है। वैसे इस उत्सव को रुक्मिणी द्वादशी कहा जाता है, परंतु द्वादशी तिथि आज प्रातः काल में ही समाप्त हो गई, सूर्योदय के से पहले ही। तो इस वजह से, जैसे मैं कल संक्षेप में बता रहा था, कि द्वादशी तिथि लुप्त हो गई इस समय, इस अवसर पर, और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई। तो वास्तव में आज त्रयोदशी तिथि चल रही है, फिर भी क्योंकि कल एकादशी तिथि थी, सूर्योदय के समय एकादशी तिथि थी, इसलिए कल हमने एकादशी मनाई और उसे हम महाद्वादशी कहते, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। तो इसलिए आज रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिन मना रहे हैं। तो कथा में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि श्री कृष्ण अब कुंडिन या कौंडिन्यपुर पहुंच चुके हैं, शहर के बाहर आ चुके हैं, और रुक्मिणी देवी बहुत आनंदित हुई हैं। वैदर भी हृष्ट मनसा, हृष्ट मतलब जो बहुत प्रसन्न हुई थी, मनसा मतलब उनका मन। तम आगतम समाज्ञाय, समाज्ञाय मतलब जब उनको ज्ञात हुआ कि तम अर्थात श्री कृष्ण आगतम पधारे हुए हैं, आ चुके हैं, तो फिर वो बहुत प्रसन्न हो गई। तो जब राजा भीष्मक को पता चला कि श्री कृष्ण आए हुए हैं और उनके शहर के बाहर हैं, तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। भीष्मक राजा ने क्या सोचा कि कृष्ण और बलराम दोनों ही रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए आए हैं। तो खैर, अतिथि देवो भव, आप जानते हैं इस कथा, इस सुभाषित को आप सुन चुके हैं। तो अतिथियों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। तो भीष्मक राजा बाहर गए शहर के, बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण का स्वागत किया, मधुपर नए वस्त्र अन्य उपहार आदि देकर। और फिर बलराम भी पहुंच चुके थे उस समय तक अपनी सेना को लेकर साथ में। तो जब सारे अन्य राजाएं अपनी अपनी सेनाओं को लेकर आए थे, तो बलराम जी भी अपनी सेना को लेकर आए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो राजा भीष्मक ने कृष्ण बलराम के लिए भी और उनके सारे सेनापतियों के लिए, सैनिकों के लिए, हाथी घोड़ों के लिए, सबके लिए उपयुक्त रहने के लिए व्यवस्था कर दी और बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, देखभाल किया। और जितने भी राजा, राजकुमार और अन्य अतिथि आए थे, सबके लिए उचित व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने। यथाशक्ति, यथा आयु, यथा बल, यथा स्थान, सबको अपने अपने स्थान के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था की दी उनकी, उन्होंने, राजा ने। तो अब जब कौंडिन्यपुर के की प्रजा थी, उन्होंने जब सुना कि श्री कृष्ण पधारे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कृष्णम आगतम आकर्ण्य विदर्भ पुरवासिनः। कृष्णम आगतम मतलब कृष्ण आ चुके हैं, आकर्ण्य मतलब जब उन्होंने सुना, कर्ण मतलब आंखें, आकर्ण्य मतलब जो कानों के अंदर प्रवेश करते हैं या फिर साधारण शब्दों में कहा जाए तो सुनना। तो जब उन्होंने सुना, किन्होंने सुना, विदर्भपुरवासिनः, वासिनः मतलब वास करने वाले रहवासी, पुर मतलब शहर, तो विदर्भ के रहने वाले निवासियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण आए हैं आगत्य, तो वो भी उस स्थान में चले आए। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सब चले गए उसी स्थान पर जहाँ की जहाँ पर श्री कृष्ण रह रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया, नेत्रांजलि भी पपुस्तन मुख पंकजम, बहुत काव्यात्मक और सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि नेत्रों को अर्थात उनकी आंखों को उन्होंने अंजलि बनाए, जैसे अंजलि मुद्रा हम कहते हैं ना ऐसे, या फिर ऐसे इस प्रकार से दोनों हाथों को हम आगे रखते हैं ना, जैसे कभी पानी पीते हैं, कभी हमारे पास कोई पात्र नहीं होता है, जैसे नल से पानी बह रहा है और हमारे पास कोई पात्र नहीं होता, तो हम ऐसे दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं फिर पानी पी लेते हैं। तो किसी चीज़ को पीने के लिए भी कभी कभी ऐसे अंजलि मुद्रा में हम रखते हैं हाथों को। तो उन्होंने अपने आँखों को एक पात्र बनाया, नेत्र अंजलि भी ही, और इस प्रकार से उनके आँखों के पात्रों से तो उन्होंने क्या किया, पपुहो उन्होंने पी लिया। क्या पिया, तन मुख पंकजम, तन अर्थात श्री कृष्ण, उनके सुंदर मुखारविंद, पंकज अर्थात कमल, तो उनके सुंदर मुख का पान किया। सुंदर मुख का पान करने का अर्थ है उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करना, क्यों श्री कृष्ण का मुख तो बहुत सुंदर है, तो भगवान के सौंदर्य का दर्शन का जो अमृत है उसका पान उन्होंने अपने नेत्रों से कर लिया, उनको अपना एक पात्र बना दिया और इस तरह से इसका पान किया। और अब देखिए कि अन्य जो राजा वहां पर आए थे, जरासंध, शाल्व और पौंड्रक इत्यादि, उनकी भावना क्या थी श्री कृष्ण के प्रति, और कौंडिन्यपुर के लोगों की भावना क्या थी श्री कृष्ण के प्रति, कितना अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो विदर्भ के निवासियों ने क्या कहा, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति नापर, अस्य एव, अस्य मतलब इनके लिए, किनके लिए, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए भार्या, भार्या अर्थात पत्नी भवितुम होनी चाहिए, रुक्मिणी अर्हति न अपरा, इनके लिए अर्थात श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी देवी ही पत्नी होनी चाहिए और कोई नहीं, अन्य पत्नी नहीं होनी चाहिए इनके लिए। ये कौन कह रहे हैं, विदर्भ के निवासी गण कह रहे हैं। और उसी तरह से रुक्मिणी और रुक्मिणी के बारे में कह रहे हैं, असाव अपि, असाव मतलब ये श्री कृष्ण, अपि अनवदय, अनवद्य, अनवद्य का मतलब है जिनके कोई दोष नहीं है, तो आसाव अपि अनवद्य आत्मा भैष्म्याः समुचितः पतिः। तो जिस प्रकार से केवल रुक्मिणी ही कृष्ण के लिए उचित पत्नी है, उसी तरह से तो श्री कृष्ण भी इनके लिए एकमात्र उचित पति हैं। किन के लिए, भैष्म्याः, जैसे हम पहले दिन पर कह चुके थे कि रुक्मिणी देवी का और एक नाम है भैष्मी। क्यों भैष्मी, क्योंकि उनके पिता का नाम है भीष्मक, तो भीष्मक की पुत्री है भैष्मी, तो भैष्म्याः मतलब भैष्मी के लिए, तो भैष्मी के लिए भी समुचितः पति, समुचित पति, संपूर्ण तरह से उचित जो उनके पति हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से जो विदर्भ के निवासी हैं वो आतुर हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण का विवाह या रुक्मिणी देवी, श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी देवी से हो, वो नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी देवी का विवाह शिशुपाल से हो, और फिर वो कहने लगे कि अच्युत जो कि इस सृष्टि इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं वो हमारे पुण्य कार्यों से संतुष्ट हों, अच्युत अर्थात श्री कृष्ण, और इस तरह से वो कृपा करें और रुक्मिणी देवी के कर कमलों को स्वीकार करें विवाह में। तो इस तरह से विदर्भ के निवासी प्रार्थना कर रहे हैं, ये केवल चाह नहीं रहे हैं, आतुर नहीं है, अभी प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी देवी से हो जाए। तो उनके हृदय में श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के प्रति प्रेम उभर रहा था, और उस समय रुक्मिणी देवी जो कि वधु थी वो निकल पड़ी अपने अंतःपुर से, अपने राजमहल के अंदर उनके कमरों से बाहर निकली और अंबिका देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान कर गई। और उस समय उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक उनको घेर रहे थे, और इस समय रुक्मिणी देवी धीरे 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 चलती गई अंबिका देवी के मंदिर के की ओर। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपने कमरों से वो भवानी मंदिर, भवानी अर्थात अंबिका या दुर्गा, उनके मंदिर की ओर पहले वो एक पालकी में बैठ के निकली, जैसे राज के कुमारियों के लिए राजाओं के लिए हुआ करता था ना, तो पालकी में बैठ के चली पहले, और फिर जब वो लगभग अंबिका मंदिर के निकट पहुंच गई थी तब पालकी से उतरी और फिर पैदल चलने लगी। तो क्या सोच रही थी, किन के ऊपर ध्यान कर रही थी रुक्मिणी देवी जबकि वो अंबिका मंदिर की ओर जा रही थी, यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सा अनुध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजन भुजम। तो सा मतलब वो स्त्रीलिंग है कि रुक्मिणी देवी, अनुध्यायति मतलब वो ध्यान कर रही थी, अनुशब्द का तात्पर्य है कि निरंतर ध्यान कर रही थी, ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए ध्यान कर दिया, ध्यान किया और फिर मन भटक गया कहीं और, नहीं। अनुध्यायति शब्द का तात्पर्य है कि वो सतत ध्यान कर रही थी सम्यक, और सम्यक मतलब पूर्णतया, जैसे हम संकीर्तन कहते हैं ना, सम्यक कीर्तन, संपूर्ण कीर्तन। तो इसी तरह से रुक्मिणी देवी का ध्यान संपूर्ण था, और ध्यान का विषय क्या था, मुकुंद चरणाम्बुजम, चरण अम्बुजम, अम्बुज अर्थात कमल। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर उनका ध्यान पूर्णतया केंद्रित था, और रुक्मिणी देवी के साथ में उनकी माताएं थीं, उनके सहेलियां थीं, और श्री उनकी रक्षा करने के लिए अनेक सैनिक भी थे। तो इस प्रकार से जैसे रुक्मिणी देवी चल रही थी अंबिका मंदिर की ओर, तो वाद्य भी बज रहे थे वहाँ पर, और बहुत सारे अन्य लोग थे वहाँ, ब्राह्मण थे, उनकी पत्नियाँ थीं, और वो तरह तरह के गीत गा रही थीं और स्तुतियों का पाठ कर रही थीं, तरह तरह के उपहार जैसे कि फूलों की मालाएं और गंध, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि, सारे इन चीज़ों को साथ में लेकर चल रही थी। तो जैसे रुक्मिणी देवी अंबिका देवी के मंदिर में पहुंची, उन्होंने अपने चरणों को धोया और फिर आचमन किया। वैसे ये एक मर्यादा है, शिष्टाचार है, प्रथा है कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले हमारे पैरों को हमें धोना चाहिए। अभी जूते चप्पल पहन के अंदर जाने की बात तो दूर रही, हम पैरों को धोते हैं। यद्यपि हमारे मंदिरों में अनेक ऐसे व्यवस्था कभी कभी संभव नहीं है, अनेक हमारे प्राचीन मंदिरों में ऐसे व्यवस्था है। यदि आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहाँ पे पैर धोने के लिए स्थान है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ अपने चरण कमलों को धोया करते थे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के पहले। उसी तरह से तिरुपति मंदिर में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पानी के बीच में से ही जाना पड़ेगा, पानी में आपके पैरों को डाल के ही जाना पड़ेगा, तो अपने आप पैर धुल जाते हैं। तो खैर, रुक्मिणी देवी ने अपने चरण कमलों को धोया, आचमन किया और फिर बड़े शांत और प्रसन्न चित्त से वो माता अंबिका के सानिध्य में आ पहुंची, अर्थात माता अंबिका के श्री मूर्ति के सामने। तो आचार्यों की टीका के अनुसार वैसे यहाँ पे ये मुख्य विग्रह रुक्मिणी अंबिका देवी का था, दुर्गा देवी का था, और शिव जी भी वहाँ पर थे परंतु एक सहायक के रूप में। तो जो ब्राह्मणों की, वरिष्ठ ब्राह्मणियों की पत्नियाँ थीं, वो ले गईं रुक्मिणी देवी को अंदर, और फिर उनको बताया कि कैसे अंबिका देवी को या भवानी देवी को कैसे सम्मान अर्पण करना है। भवानी और भव, शिव जी का नाम है भव और उनकी पत्नी है भवानी, जैसे शिव जी का नाम है रुद्र तो उनकी पत्नी का नाम है रुद्राणी। तो इस प्रकार से अंदर गई और अब जब अंबिका देवी के श्री मूर्ति के सामने आके खड़ी हो गई रुक्मिणी देवी, तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, शुकदेव गोस्वामी उनकी प्रार्थना को बतला रहे हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, नमस्ये त्वा अंबिके, हे अंबिके मैं आपको नमन कर रही हूँ। अंबिका का जब संबोधन होता है तो अंबिके, जैसे गंगा का संबोधन होता है तो हे गंगे, हे नर्मदे, हे यमुने, तो उसी तरह से त्वा अंबिके, तो हे अंबिके आपको नमन है मेरा। किस प्रकार का नमन, अभीक्ष्णम मतलब निरंतर मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ, ऐसे रुक्मिणी देवी प्रार्थना कर रही हैं। और आपके साथ साथ शिवाम मतलब आपके पूजनीय पति शिव जी और स्वसंतान युतम और आपके जो संतान हैं उनको भी मैं नमन कर रही हूँ। तो शिव जी और दुर्गा देवी के संतान तो हैं, आप जानते हैं ना, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, तो इस प्रकार से मैं उनके चरणों में भी नमन करती हूँ। तो भूयात् पतिर मे भगवान कृष्णस्तत अनुमोदताम, तो अनुमोदताम अर्थात आप कृपया अनुमति दीजिए, आप ऐसी कृपा करें कि ये हो जाए। क्या हो जाए, कृष्ण भगवान जो कि भगवान है वो भूयात् पति ही मे, वो मेरे पति बन जाएं, ये मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तो किनका स्मरण होता है, जब वृंदावन में गोपियाँ कात्यायनी देवी जो कि अंबिका या भवानी या दुर्गा के एक और एक रूप हैं, उन कात्यायनी व्रत का पालन करती थीं, कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती थीं कि श्री कृष्ण हमारे पति बन जाएं। ऐसे वैदिक सभ्यता में, वैसे कर्मकांड में देखा जाए तो किसी को यदि अच्छे पति चाहिए या पत्नी चाहिए तो वो शिव जी के पास, दुर्गा देवी के पास जाती थी। तो खैर, उसी तरह से यहाँ रुक्मिणी देवी अवश्य जा रही हैं अंबिका देवी के पास, जो उनकी कुल देवी थी, परंतु क्या प्रार्थना कर रही हैं कि आप ऐसी कृपा करें कि मुझे श्री कृष्ण के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। फिर रुक्मिणी देवी ने अर्चना की अंबिका देवी की, जल से, गंध से, अनाज से और तरह तरह के अगरबत्ती आदि से, वस्त्र, फूलों की मालाएं, आभूषण और अन्य जो आरती उन्होंने उतारी उनकी। और इसके बाद जो ब्राह्मणों के पत्नियां थीं, ब्राह्मणियां थीं, उन्होंने भी अपने अपने तरह से अर्चना विधि का पालन किया। फिर सारे ब्राह्मणी जो थी उन्होंने रुक्मिणी देवी को आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मणियों के चरणों में नमन किया और फिर ये प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उस समय रुक्मिणी देवी ने अपने मौन व्रत को त्याग दिया और अपने एक सहेली के साथ फिर बाहर निकल पड़ी अंबिका मंदिर से बाहर। और जैसे वो बाहर निकली तो राजागण वहां पर सारे उपस्थित थे, जितने भी बाहर से आए थे, जो रुक्मी के मित्र थे, शिशुपाल और जरासंध इत्यादि बहुत सारे इकट्ठे हुए थे वहां पर। और क्योंकि रुक्मिणी देवी साक्षात लक्ष्मी हैं, तो अति सुंदर हैं और बहुत ही आकर्षक लग रही थी। तो जैसे इन राजाओं ने रुक्मिणी देवी का दर्शन किया तो मोहित हो गए सारे। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ तक कहते हैं कि इतने स्तब्ध हो गए सारे कि उन्होंने अपने उनके हाथों से अस्त्र भी गिर पड़े, उनमें से थोड़े बेहोश होके भी गिर पड़े। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रुक्मिणी देवी का सौंदर्य कितना हुआ होगा। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बात से हमें अवगत करते हैं, और वो ये है कि रुक्मिणी देवी जो हैं वो श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, और इसलिए जो अंतरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, अर्थात जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, वो भला भगवान के अंतरंगा शक्ति के मूर्तिमान स्वरूपिणी रुक्मिणी देवी का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से कैसे कर सकते थे, नहीं कर सकते। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि वो जिस रुक्मिणी देवी के रूप को देख रहे थे वो रुक्मिणी देवी के का एक एक विस्तार था, जो कि इस एक मोहक रूप था, एक मिथ्या रूप था, जो कि भगवान के शक्ति से उत्पन्न हुआ था। तो जिस प्रकार से हम सुन चुके हैं ना पहले भी कि चैतन्य महाप्रभु ने उस रामदास ब्राह्मण को समझाया, रामदास की प्रदक्षिण भारत की यात्रा में, कि रावण ने वास्तव में सीता देवी का स्पर्श नहीं किया, उनको उनका अपहरण नहीं किया, ये तो संभव नहीं है। उन्होंने माया सीता का अपहरण किया। वास्तविक जो सीता है वो तो अग्निदेव के पास रही, क्योंकि रावण तो असुर था, तो रावण का कोई अधिकार नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं था कि वो सीता देवी का स्पर्श करने के बाद दूर ही दर्शन भी कर सके। तो इसी प्रकार से इन राजाओं ने, उपस्थित जितने भी राजा थे, उन्होंने वास्तविक रुक्मिणी देवी का दर्शन नहीं किया, उन्होंने रुक्मिणी देवी का एक एक विस्तार का दर्शन किया, बहिरंगा शक्ति का जो एक निर्माण था उसका दर्शन किया। तो फिर वहां पर श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। तो जैसे ही रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण ने क्या किया, श्री कृष्ण ने तुरंत रुक्मिणी देवी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उन रुक्मिणी देवी को उठा लिया और उठाकर अपने रथ पे सवार करवा दिया। जैसे ये देख रहे थे, जैसे जितने भी राजा खड़े थे वो अपने दुनिया में थे, वो सब रुक्मिणी देवी को देख रहे थे, तो देखते देखते श्री कृष्ण ने बहुत ही जल्दी इतनी तेजी से रुक्मिणी देवी को आगे चल के उठाकर अपने रथ में सवार होकर वहां से निकल भी पड़े कि राजाओं को पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। और उनका रथ कैसे था, रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजान्य चक्रम परिभूय माधवः। तो उनके उनके रथ समारोप्य तो आरूढ़ हो गए, जैसे ही उन्होंने उठा के रख लिया रुक्मिणी देवी को रथ के ऊपर, सुपर्ण लक्षणम जिस रथ के ध्वज में गरुड़ जी थे, गरुड़ जी का और एक नाम है सुपर्ण, तो उस समय माधव राजन्य चक्रम परिभूय माधव, तो माधव श्री कृष्ण ने क्या किया, राजा जितने भी राजागण उपस्थित थे उनको पीछे कर दिया। और फिर बलराम उनके आगे थे तो बड़े आराम से वहां से निकल पड़े, उस चक्र से, क्योंकि राजाओं का चक्र था वहां पर, उस चक्र के बीच में से बलराम को आगे रखते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ आराम से आगे निकल गए। कैसे आगे निकल गए? श्रीगाल मध्यात एव भाग हृत हरि ही। यहां हरि शब्द का अर्थ है एक सिंह। जिस प्रकार से एक सिंह बड़े आसानी से निर्भयता से श्रीगालों के या सियरों के बीच में, सियारों के बीच में से निकल पड़ता है अपना भाग लेकर, तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जो एक सिंह के समान थे, रुक्मिणी देवी जो उनके पत्नी बन गई थी, एक बार उन्होंने स्पर्श करके उनको रथ पे सवार कर दिया तो बड़े आसानी से वहां से निकल पड़े। और उस समय जब राजाओं को पता चला कि अरे ये क्या हो गया, हमारे ये सब उपस्थिति में देखते देखते ये क्या हो गया, तो थोड़े लोगों को हृदय को दौरा भी आ गया होगा। सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन तो नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा धक्का पहुंच गया उन सबको। और फिर इस हार को वो सहन नहीं कर पाए, उनके स्वाभिमान के लिए ये बहुत बड़ा ठोकर लग गया था। अब बड़ा अपमान हो गया था इन सारे राजाओं का कि उनके उपस्थिति में ऐसा कुछ हो गया। फिर वो कहने लगे, अहो धिक अस्मान, धिक्कार हो हमारा, अपना ही अपने आप को ही कोस रहे थे। अहो धिक अस्मान, यश हृतम, हमारे यश को उन्होंने नष्ट कर लिया है, हम अभी अपमानित हो गए हैं। आत्त धनवनाम गोपैर केशरीणाम मृगैर इव, देखो ये धनवनाम, हम इतने बड़े योद्धा हैं और ये लोग कौन है? गोपी गण, गोपगण हैं ये लोग, गायों का देखभाल करने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम ब्रज में थे ना, वहां पे गायों का देखभाल करते थे। तो आत्त धनवनाम गोपैर, इन्होंने हमारे यश का हरण कर लिया है, हमें अपमानित किया है, ये कैसे संभव है? इन्होंने ये कैसे किया? केशरीणाम मृगैर इव, जैसे सिंहों के बीच में कोई छोटे पशु आके कुछ लेकर भाग जाए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल ऐसे हुआ, हम सब शेर या सिंह के समान हैं और ये कृष्ण बलराम छोटे छोटे पशुओं के समान हैं, हम सब के बीच में आके हमारा अधिकार छीन कर ले गए हैं ये। वास्तव में सत्य तो बिल्कुल उल्टा है, वो सब छोटे छोटे पशुओं के समान थे और श्री कृष्ण सिंह के समान थे। तो श्री कृष्ण के बीच में आए और फिर उन्होंने रुक्मिणी देवी को उठाकर फिर वो ले गए वहां से। अब अगला अध्याय प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का विवाह। तो ऐसे आपस में चर्चा करके ये राजागण जो क्रुद्ध हो गए थे, बहुत ही क्रोधित हो गए थे, उन्होंने अपने कवच आदि सब धारण कर लिए, अपने अपने रथों पर बैठे, या कोई घोड़े पर बैठे, कोई रथ पर बैठे, कोई हाथी के ऊपर बैठे, और फिर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। और उधर जब यदुवंश के जो सेनापति थे, उन्होंने देखा कि ये राजा लोग उनकी ओर आ रहे हैं आक्रमणात्मक भाव से, अस्त्र शस्त्र ऊपर धारण किए हुए, तो और ये देखा कि ये राजा लोग उनके ऊपर तीर और अन्य अस्त्र छोड़ रहे हैं, एक अस्त्रों की या तीरों की वर्षा हो रही है उनके ऊपर, तो ये देखकर रुक्मिणी देवी बहुत ही घबरा गईं, बहुत ही भयभीत हो गईं। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण हंसने लगे, प्रहस्य भगवान आह मास्म भैरवामलोचने। प्रहस्य मतलब हंसने लगे, कौन हंसने लगे? भगवान श्री कृष्ण। और फिर आह वो कहने लगे, क्या कहा उन्होंने रुक्मिणी देवी को? मास्म भैर वामलोचने, हे वामलोचने, वाम मतलब जो बहुत सुंदर हैं, लोचन लोचन अर्थात आंखें। ते हे सुंदर नयनी, सुंदर नेत्री, मास्म भय ही, आप बिल्कुल डरना नहीं। विनंक्षति अधुना एव एतत्। तो ये जो बहुत ही इसी समय ये तावकै ही शात्रवम बलम, ये जो हमारे शात्र शत्रु है ना, तो इन शत्रुओं के जो कब जो सैन्य बल है वो विनंक्षति अधुना एव एतत्। अभी अभी बहुत ही जल्द हमारे शत्रुओं का बल नष्ट होने वाला है। किनके द्वारा नष्ट होने वाला है? तावकै ही, आपके शत्रुओं आपके सेनाओं के द्वारा। अब रुक्मिणी देवी तो श्री कृष्ण की पत्नी बन गई है ना, विवाह का यज्ञ तो हुआ नहीं अभी तक, परंतु रुक्मिणी देवी के हाथ लेकर उनको ले जा रहे हैं श्री कृष्ण। तो इसलिए अब बड़े प्रेम से श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से कह रहे हैं कि ये जो यदुकुल की सेना है ना, ये आपकी सेना है, इसलिए तावकै ही। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ अपने ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं। देखिए, अकेले में किसी ऐश्वर्य का भोग करने में कोई आनंद नहीं है, है ना? ऐश्वर्य का कोई मतलब नहीं होता जब आपके साथ कोई उस ऐश्वर्य का आपके भोग करने में साथ न दे। आप अक्सर हम ये उदाहरण देते हैं कि यदि आपको कहा जाए कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक कि आप सारे पृथ्वी के राजा बन जाएं, परंतु आपके साथ कोई नहीं रहेगा, अकेले आपको रहना पड़ेगा, सारे पृथ्वी का भोग कर लीजिए आप, किंतु एक भी मनुष्य आपके साथ में नहीं रहेगा। या तो फिर अब आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपके पास आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, इनके साथ में रहिए। तो हम में से सारे अकेले होना पसंद नहीं करेंगे, अकेले होकर क्या फायदा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी आत्माराम होने के बाद भी एको बहुश्याम अपने आप को विस्तारित कर देते हैं, अपनी आध्यात्मिक या शक्ति का तटस्था शक्ति का विस्तार करते हैं, और फिर इतने सारे जीवात्माएं बन जाते हैं, फिर इनके साथ भगवान श्री कृष्ण आनंद प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और अपने ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण अपने ही ऐश्वर्यों का अंतरंगा शक्ति द्वारा निर्मित भोगों का वस्तुओं का भोग करते हैं, तो अपने साथ अपने भक्तों को ले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अकेले भोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अब रुक्मिणी देवी का ऐश्वर्य हो गया है, और वो कहते हैं तावकै ही, ये आपकी सेना है। और यदुवंश और यदुकुल के जो यदु सेना थी, यादव सेना, जिसमें गद श्री कृष्ण के छोटे भाई और संकर्षण अर्थात बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, ये सबसे बड़े सेनापति थे, तो राजाओं द्वारा किए गए आक्रमण को वो सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने भी अपने अस्त्र उठाए और तीर आदि चलाना प्रारंभ किया। तो वहां पर घमासान युद्ध हो गया, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, और ऐसा युद्ध कि बस इसका वर्णन करना मुश्किल है। तहस नहस कर दिया बिल्कुल यादव सेना ने इन सारे राजाओं का। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सारे जो घोड़े हाथी और सब इधर उधर मरे हुए पड़े थे, जितने भी सारथी थे और सैनिक थे, सेनापति थे, सब के सर कटे हुए थे, सब या वहाँ पड़े हुए थे। और इस तरह से जब तहस नहस हो गया, तो जरासंध और अन्य राजाओं ने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना अच्छा रहेगा, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है, अभी अपनी जान भी चली जाएगी। तो यद्यपि एक क्षत्रियों के लिए ऐसा उचित नहीं है, परंतु राजाओं ने सोचा होगा कि भाई हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं इनके साथ में शिशुपाल के विवाह के लिए। अभी शिशुपाल के विवाह के लिए अपने प्राणों को त्यागना तो उचित नहीं है, तो चलो निकल पड़ो यहाँ से। तो निकल पड़े सारे वहां से, अब शिशुपाल अकेले पड़ गए। तो शिशुपाल बड़े उदास हो गए, बहुत बड़ी आशाएं लेकर आए थे शिशुपाल कि रुक्मिणी मेरी पत्नी बन जाएंगी, और अब निराश हो गए बेचारे। तो बहुत उदास होकर बैठे थे, सारा उनका जो तेज जो भी था, जोड़ा थोड़ा बहुत था, वो भी निकल गया, सारा उत्साह उनका निकल गया, उनका चेहरा तो सूख गया, छोटा हो गया। और फिर जरासंध आदि राजाएं उनको उनको सांत्वना देने लगे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा प्रचार करने लगे। देखिए आवश्यकता पड़ने पर ये जो बड़े बड़े असुर हुए हैं ना इतिहास में, वो भी प्रचार करना शुरू करते हैं, और वो भी भगवद गीता उपनिषद आदि से कथा करना शुरू करते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने किया, जबकि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया था वराहदेव के रूप में। तो हिरण्याक्ष के पत्नियों को उपदेश दिया हिरण्यकश्यप ने, यदि हमने यदि सुना नहीं कि कौन ये कह रहा, हम सोचते कि किसी बड़े पंडित ने, किसी भक्त ने ये सारे उपदेश कहे होंगे। उसी तरह से रावण भी बड़ा पंडित था, समय आने पर वो भी बहुत ही विद्वत्तापूर्ण उपदेश दे सकता था, परंतु केवल ऐसे विद्वत्तापूर्ण उपदेश देने से क्या लाभ, जबकि हृदय इतना दुष्ट है, स्वभाव इतना जटिल है, तो फिर क्या फायदा। हृदय का परिवर्तन होना आवश्यक है। तो खैर जरासंध कहने लगे, भो भो पुरुषा शार्दूल, अरे सुनो सुनो हे मनुष्यों में से शेर, शार्दूल अर्थात शेर। तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए शिशुपाल को कह रहे हैं तुम शेर हो। शेर दिल मनुष्य, सुनो सुनो। दौर मनस्यम इदम त्यज, दौर मनस्य अर्थात तुम्हारा जो उदासीपन है ना, इसको इदम त्यज, त्यज मतलब त्याग दो। अभी आखिर देखो हे राजन, जिन आत्माओं ने भौतिक शरीर धारण किया है ना, उनके लिए न सुख न दुख स्थाई होता है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। और संसार में देखिए, अभी जरासंध बोल रहे हैं, जिस प्रकार से कठपुतली चलती है किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में, उसी प्रकार से ये सारा जगत जो है चल रहा है श्री भगवान के संचालन, भगवान जिस तरह से संचालन करते हैं, भगवान के हाथों में सब कुछ ये चल रहा है। अभी क्या जरासंध नहीं जानता था कि वही भगवान आज उनके सामने कृष्ण के रूप में है? उनको भरोसा नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। फिर अपना उदाहरण देने लगे जरासंध, कहने लगा देखो शिशुपाल मेरे साथ क्या हुआ था, 17 बार मैंने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और मैं हार गया, परंतु मैंने हौसला खोया नहीं। 18वीं बार जब मैंने आक्रमण किया तब मैंने श्री कृष्ण को हरा दिया, तो विजय की प्राप्ति मेरी हुई। इसलिए हे शिशुपाल, हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी हौसला खोना नहीं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये वास्तव में भक्तों के लिए भी होना चाहिए, अभक्तों के लिए तो है ही। हमें भी पूरा भरोसा होना चाहिए कि यदि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहें और स्थिरता से हमारी साधना आदि करते रहें, तो अवश्य भगवान की कृपा से, गुरुजनों की, वैष्णवों की कृपा से हम कामयाब होंगे एक दिन। परंतु हमारा जो भरोसा है वो सत्य पे आधारित है, भगवान पे आधारित है, भगवान के भक्तों पर आधारित है। उधर दूसरी ओर जो अभक्तों का एक भरोसा है कि हम होंगे कामयाब, वो असत्य, वो मिथ्या पर आधारित है। वो सपनों की कामयाबी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो खैर, जरासंध बता रहे हैं कि देखो मेरी इतनी बार हार हो गई, मैंने हौसला खोया नहीं और अंततः मैंने जीत प्राप्त कर ली, और इसलिए तथापि अहम न शोचामि न प्रहृष्यामि कर्हिचित, इसलिए मैं तो ना कभी दुखी होता हूं न ज्यादा आनंदित होता हूं। कालेन दैव युक्तेन, तो जानन विद्रावितम जगत, ये सारा जगत जो है संचालित है किस चीज से, कालेन दैवेन, दैव युक्तेन, तो काल के प्रभाव से और दैव से ये दुनिया चल रही है। दैव अर्थात भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत, जो भी आप कहें। तो काल के प्रभाव के अनुसार व्यक्तियों को अपने अपने किए हुए कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, जिनको हम भाग्य कहते हैं। तो इसलिए सब कुछ भाग्य के अनुसार, काल के लहरों के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें ना तो शोक करना चाहिए ना हमें ज्यादा आनंदित होना चाहिए। तो इस समय हम सब यादव सेना के द्वारा हार का अनुभव कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं। आज काल या दैव उनके पक्ष में है, इसलिए वो जीत गए। तो जब हमारे लिए काल शुभ हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, जब दैव हमारे पक्ष में होगा तो हम विजयी हो जाएंगे। इसलिए हे शिशुपाल, हौसला बनाए रखना। तो इस प्रकार से अपने मित्रों की ऐसे कथाओं को सुनकर शिशुपाल अपने अनुयायियों को लेकर अपने राजधानी में वापस चला गया, और जितने भी अन्य बचे हुए सैनिक और राजा थे वो भी अपने अपने स्थानों में चले गए। परंतु रुक्मी, जो कि रुक्मिणी के भाई, रुक्मिणी का भाई था, उसका हृदय बहुत जल रहा था। और क्यों जल रहा था? द्वेष के कारण, घृणा के कारण, अपमानित होने के कारण। इसलिए रुक्मिणी सोचने लगा कि मैं ये सहन नहीं कर सकता हूं कि मेरे बहन को श्री कृष्ण इस तरह से उठा ले गए हैं। और इसलिए अपने एक पूर्ण अक्षौहिणी वर्ग को लेकर सेना के वो निकल पड़ा, श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। और निकलने के पहले एक ऐसा व्रत लिया, मूर्खता पूर्वक एक ऐसा व्रत लिया रुक्मी ने कि मैं वहां जाकर यदि श्री कृष्ण को की हत्या नहीं कर पाया और मेरी बहन रुक्मिणी देवी को वापस नहीं ले आ पाया तो मैं कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा भयंकर व्रत लिया जो जिसका पालन करना संभव नहीं था। भले श्री कृष्ण की हत्या कौन कर सकता है, ना कोई ऐसे पैदा हुआ है ना कभी ऐसे पैदा हो जाए होगा आगे भविष्य में। तो अपने सारथी को रुक्मिणी आदेश दिया, जल्दी चलो, शीघ्रातिशीघ्र उस स्थान में ले चलो जहां श्री कृष्ण है। और फिर गालियां देने लगा रुक्मिणी श्री कृष्ण को, गोपालस्य सुदुर्मते है, ये तो केवल ग्वाल बाल है, एक ग्वालन है ये, और उस वो दुर्मति है, सुदुर्मते है, वीर्य मदम ये न स्वसा में प्रसभम भृता, आज मैं उसके मान का भंग करूंगा मेरे तीरों के द्वारा, और फिर अपने ही बड़प्पन करने लगा, घमंड में आकर कहने लगा, आज मैं गोविंद को अपने ऐसा सबक सिखाऊंगा। परंतु रुक्मी मूर्ख था, वो श्री कृष्ण के शक्ति से ज्ञात नहीं था, उसे पता नहीं था कि भगवान कौन है, और वहां जाके पीछा करके कहने लगा, तिष्ठ तिष्ठ, खड़े रहो श्री कृष्ण, और युद्ध करो मुझसे। तो रुक्मिणी ने फिर अपने धनुष बाण से श्री कृष्ण की ओर तीन तीर फेंके और कहने लगा, आहच अत्र क्षणम तिष्ठ यदुनाम कुलपम पामसना, कि हे यदुकुल का प्रदूषण करने वाले श्री कृष्ण, अत्र इसी स्थान में एक क्षण के लिए तो खड़े हो जाओ और मुझसे युद्ध करो, क्यों भाग रहे हो? तो तुम इस तरह से दौड़ रहे हो कि जैसे कौवा यज्ञ से यज्ञ में अर्पण किए जाने वाले मक्खन को उठा के ले जाए, आज मैं तुम्हें तुम्हारे इस घमंड से मुक्त करा दूंगा। और बहुत सारे अपशब्द कहे रुक्मी ने श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने 6 तीर छोड़ दिए। इन 6 तीरों से क्या हुआ? इन 6 तीरों से रुक्मी के 4 उनके जो धनुष है वो टूट गया। फिर और तीर छोड़े श्री कृष्ण ने, तो रुक्मी के घोड़े मर गए, उनके जो सारथी मर गया, और उनके जो रथ के ऊपर जो ध्वज था वो भी टूट गया। जब रुक्मी का धनुष टूट गया तो उसने दूसरा धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा, फिर वो भी नष्ट हो गया श्री कृष्ण के तीरों के द्वारा। रुक्मी ने तीसरा धनुष उठाया, उसको भी श्री कृष्ण ने काट दिया। रुक्मी ने और अस्त्र वगैरह छोड़े और श्री कृष्ण ने इन सारे अस्त्रों को चूर चूर कर दिया। अंततः रुक्मी अपने रथ से कूद कर नीचे आ गया और अपने हाथों में एक तलवार लेकर आक्रमण करने लगा श्री कृष्ण के प्रति। तो श्री कृष्ण ने तीरों को छोड़कर श्री रुक्मी के तलवार और कवच को नष्ट कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने अपने तलवार को अपने कर कमलों में उठाया और रुक्मी की हत्या करने ही वाले थे श्री कृष्ण कि उस समय रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के चरण कमलों में पड़ी। हंतुम नारहसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज, हे महाभुज जिनकी भुजाएं बहुत महान हैं, बलवान हैं, हे कल्याण, हे मंगल के मूर्तिमान स्वरूप, हंतुम न अरहसी भ्रातरम, मेरे भ्राता मेरे भाई की हत्या न कीजिए। तो रुक्मिणी देवी इतनी घबरा गई थी इस समय कि वो कांप रही थी, उनका मुखारविंद सूख गया था, बहुत शोक ग्रस्त अवस्था में थी रुक्मिणी देवी। तो इस समय श्री कृष्ण के चरण कमलों को उन्होंने पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को रोक लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दया या भगिनी मूर्ति ही, कि जो बहन होती हैं किसी की, वो कृपा की मूर्तिमान स्वरूपिणी होती हैं। तो अपने भाइयों के प्रति बहनों का बहुत स्नेह रहता है, तो इसलिए रुक्मिणी देवी ने अपने भाई रुक्मी के प्रति स्नेह दिखाया, करुणा दिखाई। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, बांध दिया रुक्मी को, बांध कर अपने तलवार से उन्होंने आधी मूछ काट दी, थोड़ा बाल उनके सर के ऊपर जो बाल थे वो भी थोड़े बहुत काट दिए, और ये एक अपमानित करने का, पराजित करने का, मार डालने का एक तरीका है। जब शारीरिक रूप से हत्या नहीं की जाती और फिर भी हमें शत्रु की हत्या करनी है, तो इस प्रकार से अपमानित करना ये मृत्यु के बराबर ही माना जाता था उस समय। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करते हुए भी नहीं किया। तो फिर यदु यदुगण सब वहां पर आए, और जब क्या देखा उन्होंने कि रुक्मी की क्या दशा है, एक बिल्कुल शर्म के कारण, लज्जा के कारण प्राय मृत्यु के द्वार पे पहुंच गया था रुक्मी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से अपमानित होना ये बहुत असहनीय हो जाता है। तो फिर जब बलराम वहां पर जो आए, उन्होंने रुक्मी को देखा तो उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया और श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, तुमने जो किया वो उचित नहीं था, इससे हम सब अपमानित हो जाएंगे। एक निकट के हमारे संबंधी के प्रति इस तरह से व्यवहार करना, उसके मूछ और बाल को काट देना इस प्रकार से, ये उसकी हत्या करना करने से बराबर है। और फिर ऐसे हल्के डांट सुनाकर श्री कृष्ण को अभी वो रुक्मिणी देवी को सांत्वना देने के लिए आ गए। तो रुक्मिणी देवी को बलराम जी ने सांत्वना दी, और फिर थोड़े उपदेश भी बलराम जी ने दिए। सांत्वना देने के बाद थोड़ा उपदेश भी दिया कि वास्तव में आपका जो भाई है वो दुष्ट है, इसलिए उचित है। और फिर थोड़े आध्यात्मिक उपदेश भी देने लगे। और क्योंकि अब समय नहीं है तो संक्षेप में कह रहा हूँ। और फिर आध्यात्मिक उपदेश, जैसे आत्मा है और जैसे शरीर का परिवर्तन है, होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक इत्यादि, तो ऐसे थोड़ा आध्यात्मिक उपदेश देने के बाद अब फिर बलराम जी रुके। और बलराम जी के उपदेशों को सुनकर रुक्मिणी देवी के हृदय में जो शोक था, जो दुख था, उसका शमन हो गया। तो अपने उदासीपन को भूल गई और आध्यात्मिक बुद्धि से रुक्मिणी देवी ने अपने मन को स्थिर कर दिया। उधर रुक्मी के साथ क्या था, केवल अपने प्राण थे बस। अपना जो एक आत्मसम्मान था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और अब उसे याद आया कि मैंने तो व्रत लिया था कि जब तक मैं श्री कृष्ण की हत्या नहीं करूंगा और मेरी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं लाऊंगा, मैं कुंडिनापुर में नहीं जाऊंगा। तो अब वो नहीं जा पाए। तो उसी स्थान में जहां ये घटना हुई, रुक्मिणी ने एक और बड़े शहर का निर्माण किया जिसका नाम था भोजकट, और वहां वहीं पे रुक्मी रहने लगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम ने सारे सेनाओं की, राजाओं की और उनकी सेनाओं की को हरा दिया, और श्री कृष्ण ने भीष्मक राजा की कन्या को, पुत्री को द्वारका ले आकर उनसे विवाह किया। तो वहां पर द्वारकापुरी में सारे लोग बहुत खुशियां मना रहे थे, बहुत हर्षित थे सारे लोग, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और श्री कृष्ण का पहला विवाह था और रुक्मिणी देवी बिल्कुल योग्य पत्नी थी हर दृष्टि से। इसलिए सारा द्वारका शहर अब सजा हुआ था। शुकदेव गोस्वामी काफी विस्तार में वर्णन करते हैं कि द्वारका और द्वारका के निवासी कैसे सजे हुए थे। यहाँ तक कि जो हाथी घोड़े थे वो भी सजे हुए थे, और वहां पे बहुत सारे अतिथि आए हुए थे जो कुरु वंश से थे, सृंजय वंश, कैकेय वंश, विदर्भ वंश, यदु वंश, कुंती वंश, ये सारे लोग वहां पर आए और बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का विवाह मनाया गया। और वहां द्वारका के लोगों ने जब सुना कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से रुक्मिणी को का विवाह किया, वो सारे आश्चर्यचकित रह गए, विस्मित रह गए सारे, और उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का गुणगान करना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री कृष्ण, लक्ष्मी देवी, श्रीमती रुक्मिणी देवी के साथ अब रहने लगे द्वारका में। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। गौर प्रेमानंदे। तो ठीक है, सही समय पे हम समाप्त कर पाए। तो आज रुक्मिणी देवी के आविर्भाव दिन पर ये रुक्मिणी और ये देवी और श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, इसका वर्णन हमने सुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ हाँ, प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए बलराम जी, जो कि उनके प्रथम विस्तार हैं, फिर बलराम जी से संकर्षण, फिर चतुर्व्यूह संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि, तो ऐसे क्रम का वर्णन पाया जाता है। तो यहाँ पर भौतिक जगत में हम देखते हैं कि चीज़ों की उत्पत्ति के लिए क्रम होता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे क्रम का क्या मतलब है, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही विद्यमान है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है। क्रम कब होता है? जब काल का प्रभाव होता है। क्रम अर्थात एक घटना होती है, उसके बाद कोई दूसरी घटना होती है, फिर कोई तीसरी घटना होती है, तो ये सब काल के प्रभाव से होता है, काल और कर्म के प्रभाव से, भगवान के निरीक्षण में। परंतु भगवान के धाम में तो किसी चीज़ की उत्पत्ति तो हुई नहीं, अनादि काल से सब कुछ विद्यमान है। फिर भी ऐसे बताया जाता है कि मूल श्री कृष्ण हैं, उनसे बलराम जी विस्तृत हुए और उनसे आगे चतुर्व्यूह इत्यादि। परंतु ये प्रश्न नहीं किया जा सकता कि ये विस्तार कब हुआ, क्योंकि वहाँ पर काल का प्रभाव उस तरह से नहीं है जैसे कि यहाँ पर भौतिक सृष्टि में दिखाई देता है। इसलिए ये एक बात अचिंत्य है। अचिंत्य अर्थात हमारे जो चिंतन, यह हमारे कल्पना के से बाहर है। बस हम इसे स्वीकार कर सकते हैं कि वहाँ पर क्रम है, क्रम होते हुए भी सब कुछ वहाँ पर अनादिकाल से विद्यमान है। ठीक है। भौतिक जगत में भी चीजों को समझना इतना मुश्किल है, हमारे कल्पना के सीमाओं के बाहर है, तो आध्यात्मिक जगत को समझना तो और भी बहुत मुश्किल है, असंभव है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, प्रश्न ये है कि रुक्मी का द्वेष जो श्री कृष्ण के प्रति था, उसके पीछे क्या कारण था। पहले तो एक चीज होती है जिसको हम स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से ही कभी कभी लोग दुष्ट होते हैं होता है ना ऐसे, स्वभाव से ही दुष्ट होते हैं, तो रुक्मी वैसा था। और दूसरी बात, कुसंग, बुरे संग से अच्छा व्यक्ति भी बिगड़ जाता है बुरे संग में। तो उनके साथी ऐसे ही थे ना, रुक्मी के साथी पौंड्रक और शाल्व जरासंध। तो इसलिए रुक्मी के हृदय में ऐसे द्वेष था। शिशुपाल का मित्र था, घनिष्ठ मित्र था, तो शिशुपाल के तो गुण लगने ही वाले थे रुक्मी के ऊपर। प्रश्न ये है कि प्रद्युम्न जो कि रुक्मिणी देवी के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो चतुर्व्यूह में से एक नहीं है, प्रद्युम्न नहीं है, बल्कि वो जीव है, कामदेव के रूप हैं। ये सारा वर्णन जो है इसके बाद वाले अध्याय में वर्णित है, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो खैर, ये आज का विषय तो ऐसा नहीं है, परंतु दोनों ही है, सम्मिलित रूप है प्रद्युम्न, क्योंकि एक ही शरीर में अनेक व्यक्ति जो हैं वो भी हो सकते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये एक लंबा विषय है, जीव गोस्वामी की टीकाएं भी हैं इसमें, इसलिए इसमें आज चर्चा करने के लिए इतना समय नहीं है, परंतु हाँ, ये दोनों चीजें हैं, दोनों एक साथ में हैं, प्रद्युम्न। तो अभी हमें याद रखना है कि भगवान कृष्ण के भी कितने सारे पुत्र थे, उनके 16,108 रानियां थीं, और हर एक रानी से उनके 10 पुत्र थे, है ना, तो कितने हो गए पुत्र। तो यद्यपि श्रीमती रुक्मिणी देवी लक्ष्मी देवी हैं, फिर भी उनके पुत्रों में या अन्य जो पार्षद हैं वो शक्ति तत्व भी हो सकते हैं और विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, उनमें जीवों का भी सम्मिलन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आध्यात्मिक क्षेत्र में संभव हैं। ऐसे स्पष्ट रूप से तो प्रश्न ये है कि क्या रुक्मिणी देवी भी गौर लीला में शामिल हुई थी। वैसे गौड़ गणोद्देश दीपिका नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ये वर्णन है कि जो श्री कृष्ण के भक्त थे वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, उनकी कोई भूमिका रही गौर लीला में। अब रुक्मिणी देवी के बारे में ऐसे स्पष्टता से ये नहीं कहा गया है कि रुक्मिणी देवी प्रकट हुई इस रूप में। सत्यभामा और जो उनके ये थे उनके बारे में बताया गया है, परंतु रुक्मिणी देवी का भाव जो है वो गदाधर पंडित में हुआ करता था, इसलिए कभी कभी गदाधर पंडित के संदर्भ में रुक्मिणी देवी का नाम आता है, परंतु स्पष्टता से ये नहीं कहा गया है कि गदाधर पंडित ही रुक्मिणी देवी थे। गदाधर पंडित वास्तव में श्रीमती राधा रानी है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। अच्छा, प्रश्न ये है कि ऐसे सुनने में आता है कि सारी वृंदावन की रानियां जिनमें रुक्मिणी देवी भी प्रमुख हैं वो सब श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं, परंतु हम ये भी सुनते हैं कि रुक्मिणी देवी चंद्रावली गोपी की विस्तार हैं, तो दोनों में एक विरोधाभास लग रहा है। सत्य क्या है, ये प्रश्न है। वैसे चंद्रावली गोपी जितनी भी अन्य गोपियां हैं ब्रज में, गोलोक वृंदावन में, उनमें से जो महत्वपूर्ण गोपियां हैं वो सब श्रीमती राधा रानी के काया व्यूह कहलाती हैं। काया व्यूह अर्थात श्रीमती राधा रानी के शरीर से उत्पन्न होने वाली उनकी निजीय विस्तार, तो चंद्रावली भी श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं, केवल भाव उनका अलग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के माधुरी रस को और भी रोमांचक और रसमय बनाने के लिए चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी चंद्रावली के रूप में प्रकट होती हैं। और फिर चंद्रावली गोपी अभी द्वारका में रुक्मिणी देवी के रूप में प्रकट होती हैं, ठीक है। अनम्यूट करना होगा आपको। कौन होते हैं? असुर लोग। हाँ, ठीक है, वैसे ये प्रश्न कथा से संबंधित नहीं है, फिर भी अभी प्रश्न ये है कि जब हिरण्याक्ष रावण इत्यादि सब आए थे यहाँ पर, जय विजय इन रूपों में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे अपराध किए, उनमें से वैष्णव अपराध भी किए। तो यद्यपि वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध है, फिर भी अंततः 3 जन्मों के बाद वो भगवान के धाम में कैसे चले गए? उनको नरक में जाना चाहिए था। तो इसका उत्तर ये है कि ये तीनों जो प्राकट्य हैं जय विजय के, ये बहुत विशेष हैं, भगवान की लीला के अंतर्गत हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार हुए हैं। क्योंकि भगवान अपने वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे और अनेक लीलाओं को संपन्न करना चाहते थे, इसलिए ऐसे हुआ। और अंततः उनको दंड तो मिला ही ना, भगवान ही ने उनकी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। तो और जीते जी भी हिरण्यकश्यप को कितना कष्ट हुआ, हिरण्यकश्यप ने कष्ट दिया सबको। लेकिन देखिए, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उनके छोटे 5 साल के बच्चे ने उनकी बात मानी नहीं। कितना अहंकार को चोट पहुंचा हिरण्यकश्यप को, जीते जी नरक में जी रहा था हिरण्यकश्यप। तो और अंत में भगवान ने हत्या कर ही डाली। तो ये भगवान की लीला है, भगवान की योजना के अनुसार ये सब हुआ है। ये कोई साधारण वैष्णव अपराध नहीं है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, वैष्णव अपराध, परंतु भगवान ने फिर दंड तो दिया ही ना उनको। ठीक है, वैसे ठीक है, कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो इसके लिए तैयारी हो गई समझ लीजिए। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि साधारणतः जब विवाह या ऐसे कोई अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें एक मंगलमय वातावरण होता है या होना चाहिए, परंतु यहाँ श्री कृष्ण के और रुक्मिणी के विवाह के संदर्भ में हम देखते हैं कि कितना तहस नहस हुआ, कितने लोगों की हत्या हुई, खून खराबा कितना हुआ, तो ऐसे क्यों? क्योंकि राक्षस विधि के अनुसार विवाह ऐसे ही होता था क्षत्रिय समाज में उस समय। तो जब कोई बलपूर्वक किसी को उठा के ले जाए तो फिर युद्ध तो होना ही है ना। तो वैसे कई और ऐसे उदाहरण हैं भागवत में। तो क्योंकि ऐसे एक प्रथा थी, और यहाँ पे रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण के द्वारकाधीश के संबंध में तो ये भगवान की बहुत महत्वपूर्ण लीला है। तो असुरों का भी वध हो गया, असुरों को दमन भी किया, और साथ साथ रुक्मिणी देवी भी उनके पास आ गईं। तो ये भगवान की लीला है। हाँ, अंतिम प्रश्न करेंगे एक या दो। हाँ हाँ बोलिए, अनम्यूट करना होगा आपको। एक एक करके करते, एक एक करके। हाँ, तो ये प्रश्न है कि हम देखते हैं कि रुक्मिणी देवी के मन में करुणा उत्पन्न हुई अपने भाई रुक्मी के प्रति, तो ये किस तरह की करुणा है? क्योंकि अर्जुन जब इसी प्रकार से करुणा करना चाहते हैं भगवद गीता के प्रारंभ में, तो भगवान उन्हें उपदेश देते हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए। ये जो बात है ये कोई योद्धा योद्धा की बात नहीं है। रुक्मिणी देवी को योद्धा युद्ध करने वाली नहीं थी, अर्जुन को युद्ध करना था। तो दोनों की परिस्थिति भिन्न है, इसलिए तुलना नहीं कर सकते। तुलना यदि करनी हो तो हमें द्रौपदी देवी से करनी होगी। जब अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्रौपदी देवी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तो उस समय द्रौपदी देवी ने सबसे कहा कि इनको इनकी हत्या मत कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे पुत्र की हत्या के बाद मैं शोकग्रस्त हो गई हूँ, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा के माँ की ऐसी परिस्थिति हो। वैसे ही अश्वत्थामा के पिता तो रहे नहीं अब द्रोणाचार्य, तो वैसे भी द्रोणाचार्य की पत्नी दुखी हैं, अभी उनका पुत्र भी चला जाए तो और भी दुखी हो जाएंगी। इसलिए अश्वत्थामा को मारिए मत, ये हमारे गुरुतुल्य हैं। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि द्रौपदी देवी एक भक्त हैं, वैष्णवी हैं महान, इसलिए उनके हृदय में करुणा थी। ठीक उसी प्रकार से रुक्मिणी देवी भी महान वैष्णवी हैं कि अपने बड़े भाई हैं रुक्मी, गलती तो की है लेकिन चलो कोमल हृदय है, तो उन्होंने कहा कि इनको क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा याचना की रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों में। ठीक है, प्रश्न ये है कि बलराम जी इस समय हल्के से कृष्ण को भी डांट रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, और आगे चल के जब घटना होती है वो हस्तिनापुर जाते हैं, वो स्वयं ऐसे कर लेते हैं। हाँ, यही प्रश्न है, बलराम जी स्वयं ऐसे करते हैं। वैसे यहाँ आचार्य बताते हैं कि बलराम जी ने हल्की डांट सुनाई श्री कृष्ण को केवल रुक्मिणी देवी को सांत्वना देने के लिए। वैसे तो वो जानते थे कि रुक्मी कितना दुष्ट है, और आगे चल के रुक्मी करने वाले हैं ऐसे, रुक्मी के साथ भी ऐसा ही करने वाले थे ना बलराम जी। लेकिन अभी रुक्मिणी देवी साथ में थी, तो रुक्मिणी देवी को सांत्वना देने के लिए उन्होंने ऐसे किया। कभी कभी ऐसे किया जाता है ना मनुष्य समाज में, कभी किसी को शांत कराने के लिए एक तीसरे आदमी को डांट सुनाते हैं, भाई ऐसे क्यों किया तुमने। हाँ, तो ताकि ये दूसरा व्यक्ति थोड़ा शांत हो जाए, उसके लगे कि भाई हाँ ये हमारे पक्ष में कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अंतिम प्रश्न कोई हो तो पूछिए। अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि रुक्मी की क्या गलती थी कि रुक्मी अपनी बहन को बचाने जा रहा था ना, भले उसका बुरा संग हो इत्यादि। उत्तर यह है कि बचाना मतलब क्या, जब हम ये बचाना शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मतलब किसी बुरी परिस्थिति से किसी को मुक्त करना चाहते हैं ना। ये बचाने शब्द का तात्पर्य होता है ना, जैसे कोई डूब रहा है तो हमने बचा लिया उसको, या कोई गलत संग में जा रहा है उससे हमने बचा लिया उसको। परंतु रुक्मिणी देवी को कौन ले जा रहे हैं? कोई दुष्ट व्यक्ति तो नहीं ले जा रहे हैं ना, कौन ले जा रहे हैं? श्री कृष्ण ले जा रहे हैं। तो इससे भला क्या हो सकता है रुक्मिणी देवी के लिए? वैसे भी रुक्मिणी देवी स्वयं चाहती थी श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, और अन्य जितने भी निवासी थे कौंडिन्यपुर के वो भी चाहते थे, भीष्मक राजा चाहते थे, अन्य परिवार के सदस्य चाहते थे। तो वास्तव में रुक्मिणी देवी, रुक्मी को समझ लेना चाहिए था कि जो हुआ वो सही हुआ, जो होना चाहिए था वो अभी हुआ, क्योंकि रुक्मी ने बाधा डाली थी इसमें, इसलिए यहां तक बात पहुंच गई थी। यदि रुक्मी मान लेता पहले से ही कि ठीक है, मेरी बहन चाहती है ना कृष्ण से विवाह करने के लिए, और मेरे पिता भी चाहते हैं, अन्य मेरे भाई भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो होने देना चाहिए, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। परंतु रुक्मी ने ऐसे नहीं किया। तो इसलिए जो विचार था कि वो रुक्मिणी को बचाने के लिए नहीं था, वो अपने अहंकार को जो चोट पहुंची उसके ऊपर मलम लगाने के लिए किया रुक्मिणी कार्य, कि मेरे होते हुए मेरे सामने किसी ने ऐसे कैसे किया। हाँ, तो मेरा सम्मान जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, सबके सामने ये मेरी नाक कट गई, अभी मुझे बदला लेना चाहिए। तो ये भाव था। ठीक है, इसलिए बचाने का कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ लीला प्रभु, और आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस्कॉन रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका नई दिल्ली की यात्रा और बढ़ती रहे, भक्तों की संख्या बढ़ती रहे, आप सब अच्छी तरह से आगे कृष्ण भावनामृत में बढ़ती जाएं। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।